ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तत् अभिप्रायम् आज्ञाय प्रादात् दुहित्रम् मुने कृष्णात् मुक्तः तम् आमन्त्र्य पुरं प्रायात् समाहितः तदभिप्रायम् आज्ञाय प्रादातुहितरं मुने कृच्छान्मुक्तदम् आमन्त्र्य कृच्छान्मुक्तस्तमामन्त्र्य पुरं प्रायात् समाहितः तदभिप्रायम् आज्ञाय प्रादातुहितरं मुने पृच्छान्मुनेत आमन्त्र्य पृच्छान्मुक्तस्तमामन्त्र्य पुरं प्रायात् समाहितः। शब्दार्थ इस प्रकार हैं, तत् चवन मुनि का अभिप्रायम् प्रयोजन आज्ञाया समझकर प्रादात् प्रदान कर दिया दुहितरम अपनी पुत्री मुने चवन मुनि को कृच्छात् बड़ी कठिनाई से मुक्तः मुक्त बनाया तम मुनि को आमंत्र्या अनुमति लेकर पुरम अपने स्थान को प्रायात चला गया। समाहितः अत्यधिक विचारवान। अनुवाद अत्र ज्वाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जाय। अनुवाद। अत्यंत विचार मग्न होकर और चवन मुनि के प्रयोजन को समझकर राजा शर्याती ने मुनि को अपनी कन्या दान में दे दी। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से संकट से मुक्त होकर उसने चवन मुनि से अनुमति ली और घर लौट गया। तात्पर्य, राजा ने अपनी लड़की से सारी बातें सुनकर चवन मुनि को यह आवश्यक बतलाया होगा कि किस तरह उसकी पुत्री ने अनजाने में ऐसा अपराध किया। किंतु मुनि ने राजा से पूछा कि उसकी पुत्री विवाहित है या नहीं। इस तरह राजा ने मुनि का अभिप्राय समझकर तद अभिप्रायम आज्ञाया तुरंत ही अपनी पुत्री को दान में दे दी और वह शापित होने के संकट से बच गया। तब मुनि की आज्ञा से राजा घर लौट गया। हरे कृष्णा। तभी नवा स्कंद का तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय में आपको दो महत्वपूर्ण लीलाएं प्राप्त होंगी, जिसमें च्यवन मुनि का जो लीला है, शरियाती की पुत्री सुकन्या का और च्यवन मुनि का जो विवाह है उसके विषय में हुआ, और ककुत्मी का जो पुत्री जो रेवती है उनका जो विवाह बलराम जी से हुआ। यानी पूरा ये जो लीला है वो या अध्याय है या पूरा स्कंद है, नवा स्कंद का तीसरा अध्याय जो है, दो महत्वपूर्ण विवाह, एक च्यवन और सुकन्या का और एक दिव्य विवाह यानी का रेवती और बलराम जी का वर्णन आता है। तो पहले के जो 8 श्लोक है उनका कोई तात्पर्य नहीं होने के कारण 9वां श्लोक को हम चर्चा कर रहे हैं। फिर भी ये 9 पहले के जो 8 श्लोक है उसका थोड़ा सा हम अर्थ को जानने के लिए प्रयास करेंगे। श्री सुख उवाच पहला श्लोक, शर्यातिर नामो राजा ब्रह्मिष्टः संभवौ हा यो वा अंगीरसाम सत्रे द्वितीयम अर्ह उचिवान। शर्यादि मनु के और एक पुत्र हुए और पूरा वैदिक ज्ञान से पूरा परिपूर्ण थे वो। वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण राजा ही एकमात्र व्यक्ति जो है ब्रह्म स्थितः यानी वैदिक ज्ञान, ब्रह्म का एक नाम है, वेदों को ब्रह्म भी कहा जाता है, ब्रह्मस्थितः। तो वैदिक ज्ञान में पूर्ण तरीके से स्थित है श्रीयाति, और उन्होंने यज्ञ का जो दूसरा दिन होता है अंगीर नामक यज्ञ का, उसका दूसरा दिन का जो विशेषता है उसके ऊपर प्रवचन भी उन्होंने दिया था। आगे कहा गया है, सुकन्या नाम तस्य आसीत कन्या कमल लोचना तस्य सार्धम वनगतो हि आगमात च्यवनाश्रमम। तो उनको एक कन्या थी जिनका नाम था सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या। तो उनको सुकन्या नामक एक कन्या थी जिनके आँख जो है कमल के समान थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि च्यवन आश्रम में, वैसे राजा जाते हैं सैनिकों के साथ में जंगल में विहार करने के लिए, उनकी पुत्री को भी लेके गए, खास करके च्यवन ऋषि है, ऋषियों के आश्रम में जाएंगे, हमारे बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा, ऋषि का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसे विचार करके उनके पुत्री को साथ में लेके वो राजा गए च्यवन आश्रम में, जंगल में गए। सा शक्ति भी परिवृता विचिन्वन अंगीरवान वने वाल्मीक रंध्रे ददर्शे कत्योदय इव ज्योतिषी। तो सुकन्या ऐसे ही छोटी सी बालिका है, एकदम बिल्कुल छोटी भी नहीं है, कन्या है। तो उधर भ्रमण करते करते जंगल में खेल कूद करते हुए अपनी उनके अनुचरों के साथ, उनके मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ, वो अलग अलग प्रकार के जो फलों को वो तोड़ते हुए, पुष्पों को देखते हुए जंगल में विहरण कर रही थी। तो उधर जाते जाते उन्होंने देखा उधर एक मिट्टी का एक ढेर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने देखा उसके अंदर क्या है, दो अंदर से एक ज्योति का प्रकाश हो रहा था, एकदम बिल्कुल चमक रहे थे दो चीजें, पता नहीं क्या था उनको। तो सुकन्या ने क्या किया, दैव चोदिता बाला, ये बाला यानी ये कन्या जो है सुकन्या ने दैव चोदिता, पता नहीं क्या देवताओं का विचार था या दैव, उनको कोई इस प्रकार का कोई कार्य करने का कुछ मन था ही नहीं, लेकिन दैवचोदिता कर्म की वजह से हो या किसी के काम की वजह से, कारण की वजह से हो, ज्योतिषा मतलब जो दो दिखाई पड़ रहे थे, ज्योति कुछ चमकते हुए कुछ दो चीज़ दिखाई पड़ रहे थे उस मिट्टी के ढेर के अंदर, तो ने क्या किया उसको, कंटकेन वै आविधत, दो कांटे लिए, एक कांटा लिया और दोनों को से होता है ना कुछ बच्चे खेलते थे, क्या है देखता हूँ सा कर दिया, अविद्यन मुग्ध भावेना, तो जैसे मुग्ध भावेना उनको मालूम नहीं था है क्या, तो क्या हुआ, सुश्राव आक तथा बही, तो उनके मुख से क्या, उनके उधर से क्या उत्पन्न हुआ, पूरा खून बहने लगा, शक्रन मूत्र निरोधाभूत सैनिकानाम तत्क्षणात, जैसे क्या हुआ, सुकन्या ने जैसे इस प्रकार दोनों जो उधर दिखाई पड़ रहे थे ज्योतिषमय चीज़ों को उन्होंने जैसे कांटे से तोड़ दिया या पंक्चर किया, तो सारे जितने भी सैनिक हैं उन सैनिकों को मूत्र और जो मल त्याग करने का जो ये है वो बंद हो गया, वह सबको कॉन्स्टिपेशन हो गया, बाहर ही नहीं निकल रहा था। राजसी तन उपालक्ष्य पुरुषाम विस्मितो भवित, तो राजा ने देखा, सोचने लगा अरे अचानक ऐसा कैसे हो गया, राजा विचार करने लगे, चटेष्टों के वर्णन आता है, तो उन्होंने सोचा अपि अभद्रम न युष्माभिरी भार्गवस्य विचिष्टितम, तो उन्होंने सोचा कुछ तो हमने अभद्र किया कार्य, कुछ तो अपराध किए हमने, वक्तम केनापि नस्तस्य कृतम आश्रम दूषणम, तो सोचने लगा राजा कि ये आश्रम को हमने प्रदूषण किया है, ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ से किसी ने कुछ अपराध किया है, उसकी वजह से आश्रम जो है प्रदूषित हो गया है। सुकन्या प्राह पितरम, तो सुकन्या जो है वो प्राह पितरम, वो बोलने लगी अपने पिता को, बीता किंचित कृतम मया, तो बड़े घबराते हुए, तो किंचित कृतम मया, मैंने कुछ गलत कार्य किया है, द्वी ज्योतिषा अजानंत्या, तो अजानते में जानती नहीं थी, तो द्वि ज्योतिषा दो ज्योति थे उसको मैंने क्या किया, निर्भिन्ने कंटके नवई, निर्भिन्न मैंने भिन्न किया उसको, छेदन किया दो कंटके नवई, तब दुहितुस्तद्वचश्रुत्वा, दुहितुः तद्वचश्रुत्वा, राजा ने उनकी पुत्री का वचन सुन के शर्याती जात शाद्वसः, तो शर्याती ने क्या किया, वो बड़े घबराते हुए वो गए च्यवन ऋषि के पास, मुनिम प्रसादयान आसा, मुनि के पास गए किसके लिए, मुनि को प्रसन्न करने के लिए गए, वाल्मीकांत हितम सुने, तो च्यवन ऋषि जो है वो अस्तित्व में बैठे हुए थे उस वाल्मीकि में, यानी जो चीटियों का घर होता है वाल्मीकि, मिट्टी का ढेर होता है, उसके अंदर खुद च्यवन ऋषि बैठे थे, वो दो चमकते हुए चीज़ कौन सा, कौन क्या था, ये दो आँख था, और उनको दोनों आँखों को फोड़ दिया, राजा समझ गए कुछ मेरी बेटी ने बड़ा अपराध कर दिया, तब ये श्लोक आता है, तदभिप्रायमज्ञाय अपराधादितम मुने ऋषान मुक्त तम आमंत्र्या पुरम प्रायात समाहितः, तो ये प्रसंग है जिसमें च्यवन ऋषि को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, सब लोग च्यवनप्राश खाते कि नहीं बड़ा फेमस है, पता नहीं कब का लीला है अभी भी चल रहा है च्यवनप्राश, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि च्यवन ऋषि वृद्ध थे, अभी वृद्ध व्यक्ति युवक होने के लिए, युवावस्था को प्राप्त करने के लिए, युवतेज को प्राप्त करने के लिए च्यवनप्राश खाया था, लेकिन अभी बच्चों को खिलाते हैं। च्यवनप्राश खाओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको दिमाग खराब करने के लिए पित्त बढ़ाएगा च्यवनप्राश व्यक्ति का। ठंडी का मौसम है, च्यवनप्राश खाना चाहिए। वो च्यवनप्राश का क्वालिटी अभी कुछ नहीं है, लेकिन वो च्यवन मुनि वृद्ध थे, वो च्यवनप्राश खाने से वो अवस्था को प्राप्त के लिए। लेकिन इस प्रसंग है, बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होता है, बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होता है। अब देखते हैं क्या शिक्षाएं प्राप्त होता है। सबसे पहली बात यह है, राजा का गुण का वर्णन हुआ है। राजा का गुण का वर्णन करते पहला श्लोक में हुआ है ब्रह्मस्थितः। पहले की राजा लोग थे, वो वेदों को जानते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों को वेदों को अध्ययन करना है। सिखाने का जो अधिकार ब्राह्मणों को हुआ करता था, लेकिन सीखने का जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को सीखना चाहिए। तीनों को द्विज कहा गया है। लोग सोचते हैं यज्ञों के वेद जो है जनेऊ संस्कार केवल ब्राह्मणों के लिए, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों को जनेऊ संस्कार जरूरी है। और ये राजा हुआ करते थे उस समय, वो यज्ञ में बहुत प्रवीण थे और ये यज्ञ जानते थे, वेद जानते थे, इतने महान राजा है वो। और उनकी पुत्री है, बहुत सुंदर पुत्री है, तो उन्होंने क्या किया, तो च्यवन आश्रम में गए। ये दूसरा शिक्षा प्राप्त होता है दूसरा श्लोक से, बच्चों को साधु संग प्रदान करना, किसी ना किसी तरीके से साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए मेरे पुत्र को पुत्री को, उनका जीवन अच्छा रहेगा, इस प्रकार की भाव हर माता पिता के हृदय में होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी क्या सोचते थे, मेरे पुत्र हैं, जो भी साधु मिलते थे उनको बुला देते, साधु का वेश ही बस उनका था, कोई कैसा साधु कुछ विचार नहीं करते थे। रोज उनके घर में बुला के उनको प्रसाद वसाद खिलाते, प्रार्थना करते थे, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए ताकि उनको राधा रानी की कृपा प्राप्त हो। ये दूसरी शिक्षा प्राप्त होता है। हमेशा वो माता पिता को बच्चों को मंदिर में लाना चाहिए और साधुओं से मिलाना चाहिए, साधुओं का आशीर्वाद दिलाना चाहिए, साधुओं से प्रार्थना करना चाहिए, हमको आशीर्वाद दो ना दो चलेगा, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे दो। तो च्यवन ऋषि के आश्रम में लेके गए। तब ये सुकन्या, बच्चों का बालिकाओं का तो खेलने का, तो बच्चों का खेलने का ज़्यादा विचार रहता, उधर जाके उन्होंने देखा, अरे क्या है चीज़, उनके अंदर बहुत जिज्ञासा रहता बच्चों में, क्या है वो क्या है, अगर कोई चीज़ अच्छा चीज़ दिखाई पड़ा इसके अंदर क्या है थोड़ा रिसर्च करता हूँ, कोई बच्चे को कुछ चीज़ दो थोड़ा खेलेगा बाद में उसके अंदर क्या है वो रिसर्च करने के लिए तोड़ देगा, रिसर्च करने की बुद्धि बहुत रहता है। और माता पिता से पूछता रहता है ये क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, लेकिन और कुछ चीज़ तो ऐसे ऐसे देखेगा, खिलौना है तो कोई ऐसा की लगा के उसको चला गया तो ऐसा करता है, तो देखे ऐसा क्यों कर रहा है ज़रा देखूँ, वो तोड़ के देखेगा बाद में फिर तकरा हो गया। बच्चे का स्वभाव होता है। और खास करके इधर दैववश कहा गया है ना, अब भी अभद्रम इधर किस प्रकार उन्हें सरियाती ने क्या किया, इग्नोरेंटली ज्योतिषा कंटके नई अभी दैव चोदिता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में बहुत सारे कुछ ऐसे महान लोगों के द्वारा कुछ ऋणात्मक कार्य, नीच कार्य, उनके उचित कार्य, उनके लिए उचित जो नहीं ऐसा कार्य किया जाता है, जैसे ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे भागना, चित्रकेतु जो है वो शिव जी को पार्वती को गोद में बैठा के भागवत को बोल रहे हैं उसको देख के हंसना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं वो दैव चोदिता, वो भगवान की योजना से या कोई और उद्देश्य से, उनके कर्मों के हिसाब से या कोई भी किसी कारण से दैव चोदिता। यानी सुकन्या में इतने सुंदर गुण थे, वो इस प्रकार करती नहीं, उनका ये ऐसा काम नहीं था उनका, लेकिन कर दिया। कैसे, परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज ने क्या किया, उनको भूख प्यास लगा तो उन्होंने जाकर स्वामी कृष्ण के आश्रम में गए, तो उधर देखा उन्होंने उनको मेरा स्वागत नहीं किया जा रहा है, मुझे प्यास लग रहा है पिलाया नहीं, स्वागत भी नहीं किया, चलो उधर सर पड़ा होता मरा हुआ सर को निकाल के च्यवन ऋषि के उनके श्रमिक ऋषि के गले में हार के रूप में डाल दिए। तब उनको पता लगा रे मैंने गलती किया, तब उन्होंने क्या सोचा, ये भगवान की योजना से हुआ, मैं इतना बड़ा राजा भूख और प्यास को सहन नहीं कर पाया, ये निश्चित रूप में मेरा कुछ ना कुछ इसके बीच उद्देश्य है। कभी गलतियां हो जाती हैं, उसका परिणाम को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ गलतियां होता है, उन गलतियां जानबूझ के नहीं होता है। कुछ बोलते मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे पनिशमेंट क्यों दे रहे हो? ठीक है, जानबूझ के नहीं किया, फिर क्यों हुआ? उसके पीछे कुछ ना कारण है, कुछ ना कारण है, उस कारण को स्वीकार करो। वो क्या है? दैव। ये दैव दैवज्ञ दैव चोदित, ये बात जो है हमारे वैदिक संस्कृति में पालन किया जाता था। हमारे नियंत्रण में कुछ चीज़ जब नहीं होता है, या हमारे कोई जान बुझे कुछ नहीं होता है, तब सोचना चाहिए कि ये कुछ ना कुछ है, भगवान का कुछ प्लान है। तो ये बात को समझना ज़रूरी है। तो इधर दैव चोदितहा ने क्या किया, दोनों आंखों को फोड़ दिया। तुरंत क्या हुआ, ऋषि को अपराध किया तो उसका इफेक्ट किसको आया? राजा को। देखिए, राज्य में कहीं भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, उसका जिम्मेदार जो है वो राजा का है। ऐसा कहा जाता है इस राज्य में कोई व्यक्ति पाप करता है, उस पाप का भागीदार एक छठा 1/6 जो है उसका पाप का भागीदार राजा बनता है। वो किया सुकन्या ने, लेकिन उनको राजा उनके सैनिकों के ऊपर असर पड़ा। क्या असर पड़ा? सबको कॉन्स्टिपेशन हो गया, अंदर खाया हुआ चीज पिया हुआ जिस बाहर निकल ही नहीं रहा, तो बड़ा। लेकिन राजा धर्मज्ञ होने के नाते तुमने सोचा ये साधारण सा चीज नहीं है, हम ऋषि के आश्रम में आए। ऋषि के आश्रम में आने के बाद इस प्रकार का अनहोनी चीज अनहोनी घटना घट रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप में हमने अपराध किया। देखिए, बुद्धि जो है जड़ बुद्धि इस प्रकार विचार नहीं कर सकता, जिसका सूक्ष्म बुद्धि है वही इस प्रकार विचार कर सकता है। जब हमारे जीवन में जब दुख आता है तो लोग बोलते हैं, सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ। लेकिन सूक्ष्म बुद्धि वाला सोचता है ओ मैंने कुछ अपराध किया होगा, या मेरी कर्मों का फल होगा, या कुछ ना कुछ गलत हुआ। ये सूक्ष्म बुद्धि है। जड़ बुद्धि वाला ये विचार करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मेरे साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, हंगामा करना शुरू करता है। लेकिन जिसके पास सूक्ष्म बुद्धि है विचार करता है ये निश्चित रूप में मैंने पिछले जन्मों के कर्म की वजह से हो, या अभी कुछ अपराध किया उसके परिणाम मुझे प्राप्त हो रहा है, इसलिए दव्यं तद्भवंत भगवत पुरो कर्माण रूपम, जैसे मेरे कर्मों के अनुसार जो होना है होने, तो इस प्रकार सोचता है। तो खास करके इधर ऋषि को अपराध किया करके तुरंत राजा ने पहचान लिया। देखिए, हम सुखी रहते हैं आशीर्वाद की वजह से, हम दुखी होते हैं खास करके शाप की वजह से, अपराध की वजह से। तो राजा ने सोचा कि मेरी सेना इस प्रकार तड़प रही है, दुखी हो रही है, क्योंकि इसका पीछे एकमात्र कारण होगा वो है उन्हें बड़ा अपराध कर दिया। तो सरयाती ने सबसे पूछा, हमने कुछ में से कोई गलत किया है क्या, गलत किया है क्या? तब किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई पता ही नहीं लग रहा था। तब वो विचार करने लगे, ऐसा कैसे है कि किसी ने चवन ऋषि के प्रति कुछ अपराध किया या गलती किया, हम में से किसी न किसी ने चवन ऋषि आश्रम को कुछ दोष पहुंचाया, इसकी दोष कोई कौन है दोषी करके राजा ने पूछा। जैसे राजा ने पूछा तुरंत उनकी पुत्री समझ गई, सुकन्या प्राह पितरम, सुकन्या अपने पिता को बोलने लगे। देखिए, गलती करना जो है मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसको स्वीकार कर लेना ये दिव्य गुण है। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती को स्वीकार करना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गलती करते उसको स्वीकार नहीं करना, दूसरों को नहीं बोलना, ये असुरी प्रवृत्ति है, उससे अपराध और बढ़ता है। तो तुरंत सुकन्या ने सोचा, सुकन्या प्राह पितरम बीता किंचित कृतम मया, बड़े भयभीत हो गए थी, भयभीत होके वो बोलने लगी, हाँ हाँ मैंने कुछ कर दिया, मैं उधर गई थी, एक मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था, उसके अंदर दो छेद थे, उसके अंदर से कुछ ज्योतिष चमक रहा था कुछ चीज़ें, तो मैंने क्या किया, दो कांटे निकाल के उसको मैंने दोनों को फोड़ दिया, तब खून निकलने लगा। ओ तब समझ गए पिताजी, मेरे मेरी बेटी ने कुछ बड़ा अपराध किया, तुरंत गए। तो आठवां श्लोक में वर्णन आता है, दुविति तद्वच श्रुत्वा, उनके पुत्री का वचन सुनते ही श्रीयाति ने क्या किया, जाता शास्वसा, तो गए जाके बड़े भयभीत थे उस मुनि चवन ऋषि से प्रसन्न करने के लिए गए। तो देखिए उनके पिता को, पिता राजा कुछ भी कर सकते हैं, सुकन्या बालिका है, बच्चा है, हाँ गर्ग, क्या हो क्या फर्क पड़ता, चलो चल जाए, चले निकल जाते हैं। तो राजा ने ऐसा नहीं सोचा, ने सोचा कि ये जो अपराध है, इस अपराध की वजह से मेरे पूरा वंश का नाश होगा, मेरी पुत्री का तो नाश होने वाला है और मेरा राज्य के ऊपर भी बड़ा संकट आने वाला है। ये अपराध जो भी हुआ है उसको क्षमा याचना करना होगा। कभी कभी हम गलती करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी को दुखी कर देते हैं, जाने अनजाने में लोग जड़ बुद्धि की वजह से हम क्या सोचते हैं, चल जाने दो, चलता चलो जाने दो चलता है, ये वैदिक सभ्यता में कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे अगर कोई आपको भला कर देता है, क्या बोलते, थैंक यू, हाँ हो गया, थैंक यू गया, बोल दिया थैंक यू, जाओ खत्म हो गया, गलती कर दिया, हाँ सॉरी बोल दिया ना, हो गया खत्म हो गया, इस प्रकार का कोई थैंक यू और सॉरी कुछ था नहीं वैदिक सभ्यता में। धन्यवाद देना, कृतज्ञता को व्यक्त करना, अगर कोई गलती करते हो पछताना उसके लिए, अरे मैंने गलती किया, तो ये पछताना। तो ये वैदिक सभ्यता का दो महत्वपूर्ण चीज़ें, कृतज्ञता, आप कोई भला करता है तो कृतज्ञ होना, टू बी ग्रेटफुल, और दूसरा क्या है, अगर कोई आपने कहीं अपराध कर दिया किसी के प्रति, तो एवल पछताना, अरे मैंने अपराध कर दिया, इसको स्वीकार करके उस अपराध को शमन करने के लिए कुछ कार्य करना। तो ऐसे राजा हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि उस समय, पुराणिक समय में भी, कुछ ही साल पहले की बात है, जब चोल राजा एक था, ये इतना चिंता होता था राजाओं को, अगर मेरे पुत्र या पुत्री को गलत करते हैं, उनको उनकी भलाई के लिए उनको सजा दे देते, उनकी भलाई के लिए। एक राजा हुआ था, उनका नाम था मनु नीति चोला, नाम तो बाद में पड़ा ये लीला के बाद, इतना अच्छा राज्य को संभाल देते मनु रीति चोला, तो कोई व्यक्ति के पास कोई दुख नहीं था, कोई कंप्लेंट नहीं था। तो राजा बड़ा दुखी था, कोई एक कंप्लेंट ही नहीं करता है, ऐसा राजा सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि मेरे जो मुझसे डरते होंगे लोग, प्रजा जो है मुझसे डर के मारे वो मेरे पास नहीं आते होंगे, इसलिए मैं एक बड़ा सा घंटी उन्होंने महल के सामने रखा, या कोई मेरे जो मिनिस्टर होते हैं उनको मेरे पास आने नहीं देते होंगे। तो मैंने राज में घोषणा किया, कभी भी किसी को कोई भी समय में कुछ भी संकट हो तो आप आके घंटी बजाना, मैं स्वयं देखभाल करूँगा आपको। तो घंटी लगाए, फिर भी कोई आता नहीं कंप्लेंट करने, घंटी बजता ही नहीं। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, 15 दिन, 2-3 महीना हुआ, अचानक एक दिन रात को बजा घंटी, राजा आतुर हो गए, कुछ तो काम मिला, चलो जाके देखभाल करता हूँ। देखा गाय था उधर, तो राजा ने सोचा अरे घंटी बजा, तो गाय ने बजाया, कुछ गलती से बजाया होगा, नहीं गाय ऐसा आंखों में सांसू था, उसको मुंह ऐसे घुमा रहे थे, मेरे साथ चलो चलो करके राजा वो गाय के पीछे पीछे गया। तो पीछे गया तो देखा उधर एक बछड़ा रास्ते पे मरा पड़ा था, राजा समझ गया कि गाय का ही बछड़ा है वो, और किसी ने उसके ऊपर रथ चलाते हुए जाके उसको मार दिया। बहुत प्रजा भी इकट्ठा हो गए थे उधर, तब राजा ने प्रजा से पूछा बताओ किसने किया इसको, सभी प्रजा चुप, कोई कुछ बोल नहीं रहा, ने कहा कि तलवार निकाल, अगर आप सही इस बात नहीं बताओगे तो मैं आप सबका गर्दन काट दूंगा, क्योंकि आप सबको ये गोहत्या का दोष लगेगा। तो ये वृद्ध व्यक्ति ने कहा राजा को आप चिंता मत करो, राजा होता है बच्चों से गलतियां होता है, इसको माफ कर देना चाहिए, तो भूल जाना चाहिए, बछड़ा ही तो गया, ठीक है। तो राजा ने कहा सच सच बताओ, नहीं तो आपका गर्दन उठा दूंगा, उठा दूंगा, कौन है? तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा आपका जो पुत्र जो युवराज है वो रथ चला रहे थे, रात का समय था, दिखा नहीं, तो अनजाने में बात हो गया कि बछड़े के ऊपर से रथ। तुरंत राजा ने बुलाया अपने सैनिकों को, बोलो मेरे युवराज को लेके आओ, एक ही पुत्र राजा का, चोल राज्य बड़ा सा राज्य था, मेरे पुत्र को बुलाओ। बुलाया उस पुत्र को, लिटाया, रोड के ऊपर लिटा के रखा, बांध के रखा। राजा स्वयं रथ के ऊपर बैठा और रथ को चलाते हुए उनके पुत्र के ऊपर चला के उसको मार दिया। तो कोई बोल सकता है बच्चा है, अनजाने में हो गया? नहीं, अनजाने में हो, जानबूझ के हो, अपराध अपराध होता है, पाप पाप होता है, चलता है, इतना ही तो है, कभी कभी हो जाता है गलतियां। ये हमारी सभ्यता नहीं थी, चलता है, हमारी सभ्यता नहीं थी, कोई भी चलता नहीं है, हर चीज बहुत गंभीर है। जानबूझ के अपराध करो या अनजाने में अपराध करो, अपराध की गंभीरता, अपराध किया करके उसको पछताना चाहिए, उसको गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे बच्चा किया बूढ़ा किया। तब कोई पूछा, राजवंत्री ने पूछा, आपका एकमात्र पुत्र युवराज है, आपने ऐसा क्यों किया, क्या इतना भी आपके प्रति पुत्र के प्रति प्रेम नहीं है? तो राजा ने कहा, प्रेम है इसलिए तो किया मैंने, प्रेम है इसलिए तो किया। तब राजा कहने लगा, जो गोहत्या करता है या गोहत्या का कारक बनता है वो व्यक्ति निश्चित रूप में अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस तो बनेगा या नीचे की योनियों में जाएगा, मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं होगा। मेरा पुत्र अगर अगला जन्म में मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं होगा, आध्यात्मिक प्रगति करेगा कैसे? अगर गोहत्या से मुक्त होना है, यानी उतना तो कम से कम मनुष्य जन्म प्राप्त होना है, तो उनका एकमात्र रास्ता है वो मृत्यु दंड से, और कोई है नहीं, ये मनु कहता है। तो मनु शास्त्र के मनु नीति के अनुसार मैंने अपना निर्णय लिया। प्रभुपाद जी बार बार मनु मनु संहिता को बार बार प्रोत्साहन देते, तब उन सबसे उनका नाम पड़ा मनु नीति चोला, उनका नाम ही पड़ गया। यानी बच्चों को खास करके उनकी गलतियों को माफ कर देना और चल जाता बेटा चलेगा टेटा है, ये कहना ये उचित नहीं है, क्योंकि उनके लिए अगर सच में प्रति प्रेम है उनको सुधारना चाहिए, उन्होंने जो गलती किया उसको प्रायश्चित करना चाहिए। गलतियों का प्रायश्चित नहीं करेंगे तो पाप का ढेर बढ़ता जाएगा, अपराध का ढेर बढ़ता जाएगा, और वो ना सुधरेगा और बिगड़ेगा, और अपराध और करते जाएगा, अपराध का बोझा उठा के वो अपराध उसका नाश का कारण बनेगा। ये वैदिक सभ्यता में सूक्ष्म विचार है। मैंने अगर किसी को दुख पहुंचाया तो निश्चित रूप से रिएक्शन आएगा, और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना होगा। वैसे तो वास्तविक प्रायश्चित तो कृष्ण भावना भावित होना अलग बात है, लेकिन प्रायश्चित तो है, प्रायश्चित करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए राजा जो है अपनी पुत्री को साथ में लेके च्यवन ऋषि के पास गए। तो च्यवन ऋषि के पास जाके ऐसा कहा गया है, मुनिम प्रसादयन प्रसादयामासा, किसके लिए प्रसादयामासा, प्रसन्न करने के लिए। मान लो कोई दुखी है, वो दुखी व्यक्ति आपके वजह से कोई दुखी हुआ, उसको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रसन्न करने के लिए कुछ भी हो करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये वैदिक सभ्यता है, मतलब मेरी वजह से कोई दुखी हुआ उसके पास जाके बैठो, उनको कैसे प्रसन्न करो, उनके मन में जो भी दुख है उसको दूर करने का प्रयास करना, ये वैदिक सभ्यता है। तो प्रसन्न करने के लिए गए तो वाल्मीकि अंतरहितम, वो वाल्मीकि अंतरहितम, वो जो मिट्टी का ढेर था, उसके पीछे बैठे हुए थे वो शनि ही, तो धीरे धीरे गए और उनके पास जाके वो निवेदन करने लगे। क्या निवेदन करने लगे? मेरी बेटी के द्वारा बड़ा अपराध हो गया, तो आपको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं, मैं क्षमा याचना करता हूं, ऐसा राजा ने कहा। तो च्यवन ऋषि ने कहा, आपकी बेटी का विवाह हुआ है क्या? इतना मात्र कहा। तो तब ये श्लोक शुरू होता है आज का, तदेव अभिप्रायम आज्ञाया। ये और सूक्ष्म बुद्धि है, दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो जानना, उसको बुद्धिमान कहा गया है। बुद्धि का अर्थ है दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है बिना वो बोले समझ जाना, इसको बुद्धिमान कहा गया है। वो व्यक्ति मंत्री बन सकता है, वो व्यक्ति मैनेजर बन सकता है, कहीं भी हो, अगर मैनेजमेंट का सबसे मूल बात यह है दूसरा व्यक्ति बोले बिना समझ जाना क्या चल रहा है, उसको मैनेजमेंट कहा जाता है, चाहे मैनेजर हो, खास करके जो प्रसाद परोसने वाला होता है ना, उसको ये बुद्धि जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रसगुल्ला लेके दू क्या, हाँ हाँ चाहिए क्या, इस प्रकार का जड़ बुद्धि वालों को प्रसाद भरोसा नहीं चाहिए। उनके मन में क्या चल रहा है वो जानने वाला ही प्रसाद परोस सकता है। शिष्य बैठे हैं और गुरुजी ऐसे बैठे हुए और कोई व्यक्ति बोलता है देखो गुरुजी को पानी चाहिए, बोला तो नहीं अभी तक, बिना बोले समझ जाना मन में क्या चल रहा है, अभिप्राय क्या है, अभिप्राय वहां क्या है, उनके हृदय में क्या अभिप्राय है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये जानना बहुत ही, पता नहीं हमारे भारतीय स्त्रियों में ये बुद्धि बहुत रहता है, अन्य लोगों में रहे ना रहे ना, ये भारतीय स्त्रियां होती है ना, वो सुमंगलियां स्त्रियां होती है, वो इनके पास बहुत अच्छा बुद्धि होता है, पति के मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है वो पता नहीं समझ जाते हैं, उनके पास वो बड़ा सूक्ष्म बुद्धि रहता है, इसलिए वो घर को अच्छा मैनेज कर लेते हैं। वैसे मंदिर को जो अच्छा मैनेज कर लेता है वो व्यक्ति वो जान लेता है उसके मन में क्या चल रहा है। मान लो कि एक ब्रह्मचारी आके बैठा है सामने, कुछ बोल ही नहीं रहा है, प्रेसिडेंट के पास आके टेम्पल कमांडर के पास आके बैठे कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो अच्छा टेम्पल कमांडर वो है वो समझना चाहिए, अच्छा ये ब्रह्मचारी को अभी कार्तिक आ रहा है उसको वृंदावन जा रहा है अच्छा ठीक है प्रसाद दिया, हाँ ठीक है पढ़ाई छलछोला माला हो गया, ठीक है अभी अब ठीक है बोल रहा है लेकिन जा नहीं रहा है, उसका मतलब क्या है समझ लेना चाहिए ना। ऐसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, तो ये सूक्ष्म बुद्धि है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये जानना, ये बड़ा सूक्ष्म बुद्धि है। तो ये हमारे आचार्य गोस्वामीगण, आप जानते हो रूप सनातन, तो रूप सनातन रामकेली ग्राम में थे उस समय, नवाब हुसैन शाह वो उस समय दोनों बंगाल एक साथ में वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल में उनका ये था राज्य का, तो राव बड़ा सा एक इमारत बना रहे थे, वो इमारत बनाने वाला जो है वो राव उसने जो कह दिया कि अरे ये तो छोटा इसे ही बड़ा बना सकता हूँ, राजा को ऐसा कहोगे तो क्या, राजा ने उसको तुरंत मार दिया, धक्का दे खत्म कर दिया, बड़ा दुखी थे, पूरा इमारत पूरा तो हुआ नहीं था, तो उनके कहीं और युद्ध करने जाना था, नवाब हुसैन शाह ने क्या किया अपने अनुचरों को बुलाया, जाओ ढूंढ के लाओ राम के लिए, जाओ ढूंढ के लाओ राम के लिए, जाओ ढूंढ के लाओ क्या है, कुछ पूछ भी नहीं सकते, राजा इतना गुस्से में थे कि बेचारे लोग गए चार पांच लोग थे वो भटक रहे थे तो हमारे राजा भेजा ढूंढ के लाने के लिए, क्या ढूंढ के लाने के लिए, दो तीन लोगों से पूछा था, तो लोगों ने कहा हमारे गांव में दो बड़े विद्वान हैं उनके पास जाओ, तो ये दोनों आए थे रूप गोस्वामी, समय संतोष अमर उनका नाम था, अभी उनका दीक्षा नहीं हुआ, तो दोनों गए संतोष और अमर के पास जाके, हमारे राजा बहुत दुखी है राजा ने भेजा, तो दोनों ने पूछा बताओ आपके राजा के विषय में थोड़ा सा बताओ, बोले लगे, तो वो पूरा सुनने के बाद संतोष और अमर ने कहा जाओ फलाने व्यक्ति है उनके पास, उनको लेके अपने राजा के पास जाओ बस, तो क्या है नहीं आप लेके जाओ ना उनको, तो वो लोग गए और राजा के, उनको एक व्यक्ति था उसको राजा के पास लेके, राजा ने पूछा कौन हो तुम, ने कहा कि मैं मिस्त्री हूँ, इमारत बना सकता हूँ बना सकता हूँ, बनाना शुरू की, तब राजा ने पूछा अनुचर उनसे अब मैं जाते टाइम आपको कुछ बोला भी नहीं था ढूंढ के लाओ, आपने एकदम सही व्यक्ति को कैसे लाया बताओ, तुम्हारे तुम लोगों के पास कोई इस प्रकार का बुद्धि नहीं है, क्या हुआ सही सही बताओ, तो उन्होंने पूरा स्टोरी बताया, तब राजा ने कहा उन दो लोगों को बुलाओ, क्योंकि बिना मुझे देखे खाली कुछ चीजें सुन के मेरे मन में क्या चल रहा है क्या चाहिए वो लोग समझ गए, इसका मतलब बहुत अच्छा मैनेजर लोग हैं, चलो उनको मंत्री बनाता हूं, ये एक हुआ, वो दबीर खास सकार मलिक बनाया संतोष को, बाद में महाप्रभु से मुलाकात हुआ दोनों का, तब उनका नाम पड़ा रूप सनातन, ठीक है राम के लिए भी मुलाकात हुआ। ये है हम सब एक मंत्र को रोज उच्चारण करते हैं, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति सदांतिकम, चैतन्य रूप गोस्वामीपाद सनातन गोस्वामीपाद को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामीपाद छह गोस्वामियों के वो लीडर है, क्यों, महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है वो जान लिया, तो एक बार रथयात्रा चल रहा था रथ यात्रा में उस समय रूप गोस्वामी पाद का तीसरा मुलाकात महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में। खूब रथ यात्रा चल रहा है, महाप्रभु नाच रहे, नाचते नाचते वो एक श्लोक को उच्चारण कर रहे हैं। वो श्लोक कोई ऐसे लौकिक ड्रामा से था, लौकिक काव्य से था, जहाँ एक युवती जो युवक को कहती है, वेता रोदसी वेत तरुतले समुत्खंटते, कहती है कि ओ मेरे अंदर उसकी उत्खंतता है, भले तुम वही हो मैं भी वही हूँ। वो दिन का याद आ रहा है जब हमारा पहला मुलाकात हुआ था हमारे गांव में, चलो उधर जाके हम वेता रोदसी तरुतले, वो वृक्ष है वृक्ष के नीचे उस नदी के तट पे हम बैठ के आराम से हम अपनी बातें करेंगे, वही सुख का अनुभव होगा जो पहली बार हमारा मुलाकात में सुख हुआ था उस पर। तो सब लोग सोच रहे थे क्या बोल रहे महाप्रभु, क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा था, खाली स्वरूप दामोदर को मालूम था। उस समय रूप गोस्वामी पास गए, जाके एक पत्ते के ऊपर उन्होंने लिखा, पत्ते के ऊपर एक श्लोक लिखे, वो श्लोक को उन्होंने वो कुटिया था ना उधर इमली तला लेके सिद्ध बकुल में जो कुटिया हरिदास ठाकुर के साथ में रहते थे, तो उधर उन्होंने रखा और समुद्र में स्नान कर लिया। उसी समय महाप्रभु पहुंचे स्वरूप दामोदर के साथ में और उन्होंने देखा कुछ पत्ता हिला हुआ, इधर क्या लिखा हुआ श्लोक था, श्लोक को पढ़े, श्लोक के पढ़ के महाप्रभु एकदम बिल्कुल प्रसन्न हो गए। उसी समय रूप गोस्वामी वहाँ समुद्र में स्नान करके आए, जितने महाप्रभु देखे दंडवत किया, दंडवत करके उठे तो महाप्रभु ने उन्हें छेप से छापड़ मारा, तेज से छापड़ मार के तो स्वरूप दामोदर पूछते, ये रूप गोस्वामी जो है मेरा हृदय को कैसे जान लिया, मेरे हृदय में क्या चल रहा है। तो स्वरूप दामोदर ने श्लोक पढ़ा, इसके अंदर बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि राधा कृष्ण संगम सुखम, हाँ कुरुक्षेत्र मिलितस, कुरुक्षेत्र में जब राधा और कृष्ण का मिलन हुआ उस समय राधा रानी ने जो श्लोक को उच्चारण किया था यही श्लोक था, जिसमें राधा रानी ने क्या किया, कृष्ण को हाथ पकड़ के खींचते हुए लेके जा रही, क्या कहती है कि तुम वही कृष्ण और मैं वही राधा हूँ, लेकिन जगह वही नहीं है, क्योंकि इधर जो है हाथी घोड़ा सब है, सब इसमें थोड़ी ना रोमांस हो सकता है, हाथी घोड़ों के सामने सैनिक लोग हैं तलवार लेके बैठे हुए, इधर नहीं हो पाएगा हमारी लीला, होगा तो वृंदावन में होगा, चलो भले आप वही कृष्ण में वही राधा रानी हो, लीला तभी संपन्न होगा जब वृंदावन चलेंगे, चलो वृंदावन चलो। तो ये जो लीला है कुरुक्षेत्र में जो लीला घटना घटी वो महाप्रभु के मन में चल रहा था, रूप गोस्वामी पाद उसको समझ गए, चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम, और उसको स्थापितम ये ना पूछा सारे संसार में स्थापना की, इसलिए स्वयं रूप कदाम ददाती सुतांतिका, इसलिए अभिप्रायम तदभिप्रायम आज्ञाया, अभिप्राय को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रकार की सूक्ष्म बुद्धि वाले चाहिए। देखिए काम करना बड़ा पत्थर उठाना वो सब करना जड़ बुद्धि वाले कर सकते हैं, जड़ शरीर वाले, लेकिन सूक्ष्म जो बुद्धि है उसको विकसित करना चाहिए। वो सूक्ष्म बुद्धि मतलब दूसरों की भावनाओं को जानना, दूसरों की भावनाओं के अनुसार अपने व्यवहार रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यवहार जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सूझबूझ उसको कहा जाता है, ये राजनीतिक सूझबूझ, व्यवहार की जो सूझबूझ है ये प्रशिक्षण भी है और हमारे आहार विहार के ऊपर आधारित है। जैसे मान लो कि कुछ लोग सब लोग बैठे हुए हैं, एक गधा आएगा तो क्या करेगा, वो सीधा ऐसे जाएगा, लेकिन मान लो कि वैष्णव है जिसका सूझबूझ है कहीं जाना है उधर से इधर जाना है, वो थोड़ा सा झुक के हाथ दिखा के धीरे से जाएगा, है कि नहीं, नहीं तो धाड़ करके जाएगा, भले वो उनको कुछ आजू बाजू में क्या हो रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, कुछ भी मतलब नहीं। सो टू बी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होना चाहिए हमारी दूसरों के साथ व्यवहार में, बहुत ही सेंसिटिव, सेंसिटिव तो क्या बोलेंगे, बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। जब खुद के साथ होता है कोई घटना, यानी खुद के साथ अगर कुछ अच्छा बुरा जो भी होता है उसके प्रति हमारा हृदय जो है बड़ा जड़ होना चाहिए, इट शुड बी वेरी पत्थर जैसा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो चलेगा ऐसा। लेकिन दूसरों के प्रति होता है वो चलेगा, फिलासफी यूज मत करो, चलता है आजकल बहुत लोग चलता है, कोई चीज चलता नहीं है, हर चीज को बड़ा गंभीरता से रहते। बाद में तदाभिप्राय आज्ञाया प्रादात दुहित्रम मुने, तुरंत समझ गए चवन मुनि को विवाह करना है मेरी पुत्री के साथ, तुरंत प्रादात दे दिया, कन्यादान कर दिया। कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं है धार्मिक स्तर में, कन्यादान को बड़ा दान माना गया। तो ब्रह्मचारी को कन्यादान किया जाता है, लेकिन आजकल जिस शब्द को शादी बोलते हैं ना, शादी, ये शादी कोई वैदिक शब्द नहीं है। कभी यही नहीं बोलना चाहिए मेरी पुत्री का शादी है, मेरे बेटा का शादी है, हमारा शादी हो के 20 साल हुआ है, 2 साल हुआ है। शादी मतलब मौज मस्ती, ये वैदिक शब्द नहीं है। शादी मतलब मौज मस्ती, और मैरिज भी नहीं बोलना चाहिए। मैरिज जो है वो अंग्रेजी शब्द है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है मैरिज। यानी जैसे दो लोग मिलके कंपनी बनाते हैं, पार्टनरशिप डील होता है, पार्टनरशिप कंपनी बनता है, उस समय क्या होता है उसमें एक क्लॉज रहता है, एग्जिट क्लॉज करके रहता है। जो लोग सीए बड़े होंगे उनको मालूम है एग्जिट क्लॉज करके एक चीज़ रहता है। तो उसमें भी ऐसे ही पाश्चात्य देश में जब एक मैरिज करके एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ऐसा करके बनाया जाता है। उधर का लॉ क्या है, एक लड़की आती है, एक युवक आता है, युवती, एक फादरी पूछता है मंजूर है उसको पति के रूप में स्वीकार करने का, वो बोलते हैं हाँ तुमको मंजूर है पत्नी के रूप में स्वीकारना है इनको, हाँ हाँ ठीक है, आई डिक्लेयर बोथ ऑफ यू आर मैरिड। जब आपको बिछड़ना होगा तो इतना पैसा भरना होगा, जुर्माना भरना, चर्च में इतना देना होगा, इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए ये डाइवोर्स नामक चीज़ जो है वैदिक सभ्यता में है ही नहीं, क्योंकि जब पति और पत्नी का मिलन मैरिज नहीं हुआ, शादी भी नहीं हुआ, शादी का अर्थ क्या है, मौज मस्ती। जब तक मौज मस्ती है तब तक हमारे पम पति पत्नी है, मौज मस्ती खत्म हो गई तो छोड़ो, ये शादी है। लेकिन हुआ क्या है, विवाह, विवाह संस्कार को बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है। सारे संस्कार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि विवाह हुआ, जिसका विवाह नहीं हुआ तो शायद क्या संस्कार करेगा, तो जो भी है सीमंत है गर्भाधान ये सब चीज़ें कहाँ से शुरू होता है, वो विवाह से शुरू होता है। ब्रह्मचारी लोग विवाह नहीं हुआ तो बाकी झंझट कुछ है ही नहीं उनके पास। सारे संस्कार का पहला संस्कार विवाह संस्कार है, क्योंकि इसी से शुरू होता है। तो विवाह संस्कार में क्या हुआ, क्या होता है, कन्या दान होता है। इसलिए जो कन्या के पिता होता है उसका सबसे बड़ा रोल होता है। विवाह में कोई भी व्यक्ति का इतना बड़ा रोल नहीं जितना पिता का, कन्या के पिता का भाग रहता है। जो कन्या का पिता होता है वो अस्तित्व में उस विवाह का यजमान जैसा समझ लीजिएगा, उस विवाह संस्कार का यजमान, यज्ञ का। जिस किसी को भी कोई कन्या होती है जन्म लेने मात्र से उनकी पिता को एक चिंता रहती है, मैं उस मेरी अपनी कन्या को योग्य व्यक्ति को दूँ, ये टेंशन लेना चाहिए माता पिता को, मैं अपनी पुत्री को एक योग्य पुत्र योग्य वर को कैसे दूँ, योग्य वर कौन है उसको ढूंढना, हमेशा उनका एक मन में चिंता रहती है। लेकिन आजकल वो चिंता नहीं है लोगों के पास, ये बहुत बड़ा सामाजिक दुर्घटना है। समाज में सबसे बड़ा समस्या है कि पिता को अपनी पुत्री को विवाह करना की चिंता ही नहीं है। ये इसकी वजह से समाज में इतना प्रदूषण हो रहा है, पूछो मैं इतना प्रदूषण होता है। अभी हमारे गांव में, अभी आप भी देखे होंगे, ये 25-30-50 साल पहले की बात है, जैसे पिता जो है अपनी पुत्री को एक योग्य वर को ढूंढने के लिए वो कितना परेशान होते थे, टेंशन लेते, रात रात नींद नहीं आता था उन लोगों को, क्योंकि इस प्रकार की जवाबदारी पिता नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह से पूरा समाज भ्रष्ट हो गया है। एक योग्य व्यक्ति को देना ये बहुत जरूरी है। अभी इधर देखिए, चवन ऋषि है, वृद्ध है, राजा ने अपनी कन्या को उनको कन्यादान कर दिया, क्या योग्य है क्या चवन ऋषि? योग्य है या योग्य है। ऐसा कोई कहा जा सकता है, राजा, इतना बड़ा राजा अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता है क्या? ऐसा एक वृद्ध व्यक्ति को दे दिया, कन्यादान कर दिया, एक अच्छा युवराज से सरना चाहिए तो, वो भी इतनी सुंदरी, वो भी कन्यादान तुरंत कर दिया, वो भी जंगल में छोड़ दिया, कितना बड़ा पाप किया देखो, ये ठीक नहीं है, ये चाइल्ड अब्यूज है। अच्छा वो समय सीपीटी था नहीं, चाइल्ड अब्यूज है तो नहीं। तो राजा धर्मज्ञ है, शास्त्र को जानता है, तो वो कभी गलती नहीं कर सकता। तूने सोचा कि मेरे लिए, मेरी पुत्री के लिए योग्य अगर कोई वर है तो ये वृद्ध ऋषि है, कोई सुखी रहेगी तो केवल इधर ही सुखी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर इस आश्रम से बाहर जाएगी, मुनि के प्रति अपराध करके, इस मुनि का अंदर जो अभिप्राय है, उनकी इच्छा को पूर्ण किए बिना, हम क्षत्रिय है और ये मेरी कन्या अगर जाएगी, संसार में कहीं सुखी नहीं हो सकती, केवल इधर ही सुखी हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, मुक्ततम आमंत्रया, उन्होंने अपनी दे दिया। और इधर कहा गया है आखिरी शब्द में, समाहिता, समाहित मतलब बहुत विचार किया, ऐसा नहीं कि भावावेश में कर दिया, चलो मेरी पुत्री ने, बहुत विचार करके तो उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री को इनको दे दिया। देने के बाद वर्णन आता है, आमंत्रया, उनका परमिशन लिया, अभी मैं जाऊं, आज्ञा है, तो आज्ञा लेके निकल गए, दान दे रहे हैं, दान देने के बाद आज्ञा लेके जा रहे हैं। तो कोई सोचे, राजकन्या है, कुछ सुख सुविधा नहीं है, ऋषि के आश्रम में कौन सा सुख सुविधा होता है, इतनी दिनों, इतना दिन उनको इतना अच्छे से देखभाल किया, ऐसा छोड़ के जाना ठीक है, उचित है क्या? ये वैदिक नियम है, पुत्री जो होती है वो अपने घर की नहीं होती है, माता पिता की नहीं होती है, वो हमेशा दूसरी की होती है। ये माता पिता को जानना चाहिए, जिस दूसरी के उनको अर्पण करने के बाद, उनको दान देने के बाद, बस उनके जीवन में दखलंदाजी नहीं करना। अगर वो पुत्री आती भी है कंप्लेंट करने के लिए, अरे मेरे पति क्या है, इतना ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, उधर नहीं रहना, चुपचाप रहना, जाओ तुम्हारा कर्म तुम्हारा भोग, ये वैदिक नियम है। ये नियम आजकल पालन नहीं हो रहा है, उसके वजह से बहुत सारे समस्या, पारिवारिक समस्या, पारिवारिक समस्याओं को यही जड़ है। कन्यादान करने के बाद भी ऐसा अभी भी प्रथा है, पुत्री के घर में विवाह होने के बाद घर में जाके माता पिता पानी तक नहीं पीते, पानी तक नहीं पीते, यानी हमने दे दिया, दे दिया दान, दे दिया, दे दिया, बस अभी हो आप जानो, आप कुछ भी हो जाए बस। तो ये वैदिक सभ्यता है। तो राजा दान दिए और वो अपना कर्म है, एवरीबडी हैज देयर कर्म, अपना अपना कर्मों को वो उनको भोगना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार ये राजा जो है ऋषि का अनुमति लेते हुए वो निकल पड़े। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, क्वेश्चंस?
धन्यवाद गुरु जी। स्पेशली आपने मेंशन किया कैसे हमें सेंसिटिव होना चाहिए और दूसरों के भावों को समझने का प्रयास करना चाहिए। और स्पेशली हम ये भी सुनते हैं, तीन प्रकार के शिष्य होते हैं, एक जो बोले जाने पर भी नहीं करता, दूसरा जो बोले जाने पर करता, पहले जो बिना बोले हुए भाव समझ कर कर सकता है, तो ये भी उन्हीं लाइन्स में आता है। तो एक स्वाभाविक रूप से जो इस समय का एजुकेशनल ट्रेनिंग और सब, उसमें तो ग्रॉस मेंटेलिटी डेवलप होती है, जैसे हॉस्टल्स में लोग रहते दरवाजा भी लॉक मारते हैं, बहुत ग्रॉस लेवल ट्रेनिंग, तो ऐसा क्या प्रैक्टिसेस करें जिससे ये सूक्ष्म बुद्धि डेवलप हो सके?
आहार, पहला आहार, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि ही, जब व्यक्ति का आहार सूक्ष्म रहता है, बहुत सात्विक रहता है, उससे ऊपर तुरंत उसका इफेक्ट आता है, तुरंत। देखिए गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, गधा गधा ही रहेगा, तो ये जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग होता है ना, ट्रेनिंग भी ऐसा है कि अंग्रेजी में कहा होता है यू कैन नॉट मेक ए रोप आउट ऑफ अ रॉक. वो ट्रेनिंग की सफलता तभी होगी जब उसका आहार शुद्ध है. लोग पहले जमाने में लोगों का आहार बहुत शुद्ध था, इसलिए उनका विचार बहुत सूक्ष्म था. श्री प्रभुपाद जी पहला स्कंद के एक अध्याय के श्लोक में तात्पर्य में कहते हैं कि द फाइनर सेंटिमेंट्स ऑफ लाइफ आर लॉस्ट. क्यों? उधर गाय का घी के बारे में बात करते हैं, आहार के बारे में, और संगीत, आहार विहार, विहार मतलब संगीत, शास्त्रीय संगीत. जब हम ये दो चीज़ को आहार विहार अगर हमारा सात्विक नहीं है, हमारे अंदर क्रूरता आती है, एक क्रूरता आती है. इसलिए आप देखिए कोई शास्त्रीय संगीत गाता है, हमारे मंदिरों में भी बहुत सुंदर मालकोंस राग में कोई गा रहा है, कोई बोले ए क्या करें सबको बचाओ ना, पीछे पहले क्या गा के हंगामा करेगा, लेकिन तो समस्या है क्योंकि बुद्धि बहुत जड़ है. अगर उनको ये हविष्य गरम गरम राइस, उसके ऊपर घी और उसके ऊपर मूंग दाल, खाली चौंक माला हुआ देंगे ना, क्या बनाया है बीमार लोगों को बनाया है, लाओ पनीर लाओ उसका एकदम बिल्कुल, वो भी जैसे सुअर खाता है करके क्या खाए, ऐसे कैसे चलेगा बताओ. हाँ उसको कुछ भी दो सब मिला के खाएगा. ये सब पहला आहार विवाह युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मसु. कर्म तभी रहेगा जब हमारा आहार विहार ठीक हो. इससे कुछ भी खाना और कुछ भी कर देना नहीं, बहुत सेंसिटिव होना चाहिए. उस समय मंगल आरती के समय में या कोई गाने के समय, तो उस समय के अनुसार बात होना चाहिए, उस समय के अनुसार राग होना चाहिए. कभी भी कुछ भी गाया कुछ भी मार रहे हैं, इट इज ऑल जंगल जंगल. पहला आहार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, 70% ऑफ हमारा वैदिक कल्चर आहार है, लेकिन उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते. हमारे संस्था भी खड़ा है, प्रभुपाद जी ने क्या किया लोगों को, प्रसाद खिलाया, रसगुल्ले खिला खिला के, गुलाब जामुन खिला खिला के संस्था का निर्माण किया है, लेकिन केक खिला के थोड़ी ना किया है. अमेरिका में जब न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी केक खिलाते थे या रसगुल्ला गुलाब जामुन खिलाते थे, पूरी खिलाते थे पिज्जा खिलाते थे. आप देखो हमारी संस्था की बात कर, अमेरिका में पंजाबी भाग नहीं था, उन लोग मीरा रोड नहीं था. ये आहार, सात्विक आहार सात्विक व्यवहार, उससे फाइनर सेंटिमेंट्स ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली डेवलप्स. बिना बोले समझ जाएंगे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. जैसे मान लो कि भागवतम क्लास चल रहा है, बिना बोले मुझे समझ जाना चाहिए अभी प्रसाद का टाइम हो गया है. बात ये है, नहीं तो माइक मिला करके पता नहीं कब मिलने वाला है वापस. ये सब उदाहरण दे रहा हूँ, जस्ट चल उदाहरण सूक्ष्म चीज है. ठीक है, लास्ट एक और प्रश्न लिया जाएगा, किसका? हाँ
शुक्रिया जी. जैसे आपने बताया था कि कन्यादान पिता करते हैं, तो अब कन्या फुली सरेंडर्ड होती है पिता के, मतलब जो भी जहाँ पे दान करके वहाँ चली जाएगी, उनकी फ्री विल रहती है ऐसे क्या?
जैसे कन्या को सरेंडर्ड होना ही चाहिए पिता के प्रति, क्योंकि कन्या को सरेंडर्ड की बात छोड़िए, सरेंडर तो दूसरा शब्द है, मैं सूक्ष्म विचार कहता हूँ. कन्या को पूर्ण विश्वास होना चाहिए पिता के प्रति, मेरे पिता मेरे लिए जो करेंगे मेरे लिए अच्छा है. लेकिन जैसे गुरु के ऊपर विश्वास होना था शिष्य, गुरु जो मुझे कहेंगे मेरे हित के लिए कह रहे हैं, जो मेरे लिए करा रहे हैं, मुझे जो कर रहे हैं मेरे हित के लिए कर रहे हैं, ठीक है. इस प्रकार का विचार होना ही था और ऐसा ही था, ऐसा वैदिक सभ्यता में ऐसा था नहीं, तो उनके लिए और कोई चारा ही नहीं है। और दूसरा उनके ऊपर विश्वास था, मेरे लिए जो भी मेरे पिताजी डिसाइड करेंगे मेरे लिए ठीक है। पहले ऐसा नहीं था कि वो युवक और युवती शादी विवाह होने से पहले एक दूसरे को देखेंगे, पसंद आए तो करेंगे, ये पसंद आना कुछ नहीं था। ये सब अस्तित्व में बहुत ही समाज में सबसे बड़ा प्रदोष यही है कि एक दूसरे को देखना, अच्छा लगता है तो करेंगे, अच्छा नहीं लगता है तो नहीं करेंगे, अभी अच्छा लगा बाद में अच्छा नहीं लगा तो गड़बड़ है कि नहीं। अभी अच्छा लगा विवाह कर ले, बाद में अच्छा नहीं लगा तो गड़बड़। मैं अपने देखो तो जब मेरे बचपन में देखा हमारे घरों में जिनकी शादी हुआ करती थी, पहली बार लड़का लड़की कब देखता है मन में, जब मंत्रोच्चारण होता है वो पर्दा नीचे आता है उसी टाइम में देखते हैं, उसके पहले देखे भी नहीं होते। ये था, इट इज देयर, ये इस ऐसा पुराना जमाना ऐसा नहीं कि हजारों साल पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात होगा, मैं आंखों से देखा हुआ चीज़ है और जीवन भर रहते हैं। नहीं आजकल लोग क्या सोचते हैं, नहीं पहले जमना चाहिए, प्रेम होना चाहिए बाद में, नहीं, अरे आप कुत्ते के साथ भी रहो ना प्रेम हो जाता है। हो सकता है अपने भाई के साथ दुश्मनी हो, कुत्ते के साथ प्रेम करता है तो साथ में रहने से प्रेम हो ही जाता है, ऐसा कुछ चीज़ जरूरत है प्रेम होने के बाद भी होगा, प्रेम होने के बाद भी वाह होना जैसा कुछ नहीं, वाह होने के बाद लोग प्रेम करते हैं और पूरा जीवन में रह जाते हैं साथ में।
इसमें प्रभु जी जैसे स्वयंवर भी आते हैं कई सारे वर्णन आते हैं शास्त्रों में,
वो अलग प्रकार का चीज़ है, वो स्वयंवर हर व्यक्ति का नहीं होता है कभी विशेष रूप में। सीता जी का स्वयंवर क्यों हुआ, वो स्वयंवर में कंडीशन होता है, वो कंडीशन इसलिए क्योंकि वो उनकी पुत्री इतनी योग्य है, सीता जी इतनी योग्य थी, वो बचपन में वो शिव धनुष को उठा के ऐसा गेंद को निकाल कर रख दिया शिव धनुष को लेफ्ट हैंड से, हार्ट अटैक आया उनको दशरथ जनक महाराज को, जिसको खाली बड़ा पेटी है 300 लोग धक्का देते तो धीरे धीरे एक एक इंच हिलता है, अभी छोटी सी बालिका 5 साल की बालिका शिव धनुष को उठा के ऐसे करके रख दिया। तो मैंने सोचा अगर इनका योग्य वर अगर ढूंढने जाऊँ तो कहाँ से ढूंढ लूँ, इससे कंडीशन रहा कम से कम जो उनका वर मिलने वाला सीता जी को उनके समान तो होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम उनसे समान शक्तिशाली तो होना चाहिए ना, तो इससे कंडीशन रहता है, वो स्पेशल केसेस है, हर व्यक्ति का स्वयंवर नहीं होता है। हमारे माता पिता किसी का स्वयंवर नहीं हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।